एक ऐसे वक्त में जब ये खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ सदर मुशर्रफ की मफाहमत है और कोई हुकूमत बन सकती है दोनों के इतिहाद से, तो इस पर क्या असर पड़ेगा ये जो तरमीम की गई है, जिसका मतलब है कि वर्दी में भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और 2 साल की मोहलत की भी ज़रूरत नहीं है?
जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुजाकरात जनरल मुशर्रफ के साथ जमहूरियत के बहाली के लिए थी। जनरल साहब के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल करके एक साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आईन के साथ खेलें। मैं समझती हूँ कि उनके जो रुफका हैं वो चाहते हैं कि जनरल मुशर्रफ पीपल्स पार्टी के साथ समझौता ना करें, और इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तुफैल ये तरामीम का ऐलान किए हैं, जिसके तहत आईन को गैर कानूनी तरीके से तब्दील करने की कोशिश की गई है। मैं समझती हूँ कि ये मामला अदालत के सामने जाएगा और अदालत को फैसला देना पड़ेगा कि क्या ये आईन में जो तरमीम की गई है ये कानूनी है कि गैर कानूनी। आप जानते हैं कि आईन में तो खाली पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है, इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकती। तो ये हैरत अंगेज बात है कि इलेक्शन कमीशन ने किया है, और मुझे लगता है कि कोई गलत मशवरा जनरल मुशर्रफ को दे रहा है।
तो बेनज़ीर साहबा, क्या आपसे उनका इस सिलसिले में कोई राबता नहीं था? उन्होंने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया इस तरमीम से पहले?
जी, हमारे साथ इस तरमीम करने से पहले कोई राबता नहीं किया गया। जो राबता किया गया था वो इस बात पर था कि जनरल साहब कब यूनिफॉर्म निकालेंगे और कब सिविलियन बनेंगे, और फिर कौन से तरीके से वो इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, जनरल इलेक्शंस कैसे किए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टेरियल इलेक्शन। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पर बातचीत कर रहे थे ताकि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल हो और अवाम के मसले हल हों, और अवाम के मसले जब हल होंगे तो हम समझते हैं कि वो मायूसी दूर होगी जिसका फायदा इस वक्त इंतहा पसंद ले रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक सरप्राइज था जब ये रास्ता इख्तियार किया गया, मगर हम जानते हैं कि कुछ लोग जनरल साहब को कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ समझौता ना करें। तो दो ही रास्ते हैं, एक है साफ शफाफ सियासी रास्ता, पॉलिटिकल अकोमोडेशन और कॉम्प्रोमाइज के रास्ते से, और दूसरा ये है कि आईन के साथ जरा खेला जाए, इकदाम लिए जाएं, तो अदालत में फंस जाएं, फिर वकील बाहर निकलें, फिर पॉलिटिकल पार्टी शोर मचाएं। तो मुझे अफसोस है कि ये दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया है।
अच्छा, आपने अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू में कहा कि आपको खदशा है कि वतन वापसी पर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है या कराची में वही हालात पेश आ सकते हैं जो 12 मई को चीफ जस्टिस की आमद के मौके पर पेश आए थे, तो थोड़ी सी आप इसकी वजाहत करेंगी?
कि पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल है, और काफी हमारे मुल्क के अंदर जो कानून का बुनियाद होता है हर मुआशरे के अंदर उसको कमजोर किया गया है। मगर सबसे पहले मैं कहने चाहती हूँ कि मैं वापस कराची जा रही हूँ, जो बानी है पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का शहर है, और उनकी आखिरी आराम का कराची के अंदर है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम, आजाद कश्मीर, कबायली इलाके और नॉर्दर्न एरियाज के लोग आ करके मेरा बहुत शानदार इस्तकबाल करेंगे, और इस इस्तकबाल से साबित करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम अपने जमहूरी हकूक को लेने वापस लेने चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि हुकूमत गिरफ्तारी की कोशिश करेगी या फिर वो अपने कोलिशन पार्टनर या और अनासर के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करेगी। हुकूमत में बहुत से डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं, और जाहिर है उनमें कई होंगे जो इस बात पर खुश नहीं होंगे कि पीपल्स पार्टी का अच्छा रिसेप्शन हो रहा है और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा।
आपकी आमद की खबर के बाद जिस पार्टी ने, जिस किसी से भी हम लोगों ने बात की, उन्होंने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया, वो MQM है। और कराची में जाहिर है कि MQM जो है एक नुमाया जमात है, तो आपकी MQM के साथ आपका कोई रابطہ है अपनी वापसी के सिलसिले में?
जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का कोई बराह रास्त रबता फिलहाल नहीं हुआ है, मगर आप जानते हैं कि एमक्यूएम भी असेंबली के रुकन हैं और पीपल्स पार्टी भी हैं, और एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का माजी में इकट्ठा काम भी किए थे 1988 में, फिर दूर हो गए थे। तो एमक्यूएम ने जो ये फैसला किया खैर मकदम करने का, ये बहुत मस्बत रिस्पॉन्स था और हम इसको नोट किए हैं और समझते हैं कि ये आइंदा मुस्तकबिल में एक अच्छा पैसेज या रास्ता दिखा रहा है।
आपने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी जो है अगर सदर मुशर्रफ वर्दी में रहते हुए सदारती इंतखाब लड़ने का फैसला करते हैं तो पीपल्स पार्टी अदालत से रुजू करेगी।
जी, हम समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो यूनिफॉर्म में इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि मौजूदा आईन के तहत जनरल मुशर्रफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। हमने नोट किए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक अमेंडमेंट पास की है, मगर जो अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन ने की है वो खुद मुतनाज़ा है। तो ये इकदाम से हम समझते हैं कि कानूनी बहरान मजीद मुबतला हो जाएगा और मुल्क के अंदर मजीद उलझन होगी, क्योंकि सियासी मामले सियासी तरीके से हल नहीं हो रहे, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि आप अमेंडमेंट्स बनाएं जो गैर कानूनी हैं, ये ज़रूर चैलेंज होंगे। तो इससे एक नया महाजराई शुरू हो जाएगा, एक नया कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा, और हम तो मुल्क के अंदर चाहते हैं कि खुश सलूबी के साथ जमहूरियत बहाल हो। हमने डायलॉग जनरल मुशर्रफ साहब के साथ इसलिए किए हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से जमहूरियत बहाल हो, मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्कद हों और अवाम को उनके हकूक मिलें। तो हम इस ऐलान से खुश नहीं हैं, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो कानूनी माहिर हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो इकदाम है वो जनरल मुशर्रफ को तहफ़ नहीं दे सकेगा।
अच्छा, आज का जो एपीडीएम का फैसला है कि अगर जनरल मुशर्रफ ने इस तरह का कोई फैसला किया तो तमाम उनके अहदेदार जो हैं इस्तीफ़ा दे देंगे और इस तरह बलूचिस्तान और सूबे सरहद की असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तो पीपल्स पार्टी का इस सिलसिले में क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की?
ज़रूर ये जो ऐलान किया गया है एलिजिबिलिटी के सिलसिले में वो एक निशान है कि हकूमत प्रेजिडेंशल इलेक्शन की तरफ जा रही है, मगर ये बात कबल अज वक्त है कि हम कहें कि प्रेजिडेंशल इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले होंगे। तो मैं समझती हूँ कि एपीडीएम ने जो कहा है उनकी बात उस वक्त सामने आएगी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हों, मगर हमें ये नहीं मालूम आज कि वो इलेक्शंस इन असेंबली से होंगे या आइंदा असेंबली से होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम इंतजार करेंगे और हम देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है जनरल मुशर्रफ को कि वो मुंतखब हों कि नहीं।
अच्छा बेनज़ीर साहबा, आखिरी सवाल आपसे कि आपने कहा कि 4 सितंबर को मुज़ाकरात के आखिरी दौर में हुकूमत ने जो वादे किए थे उन पर अमल नहीं किया गया, तो कुछ आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि कौन से वादे थे वो?
जी, जब हम 4 सितंबर को मिले थे तो हमने कई सिनारियोज डिस्कस किए थे। एक कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था, एक उससे छोटा पैकेज था, और तीसरा यही ऑप्शन था कि चले इत्तेफाक नहीं हो रहा तो दोनों फरीक अग्री करते हैं कि वो अपने अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, और हुकूमत ने कहा था कि 2 दिन बाद वो आकर के हमें बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन पर वो उनकी लीडरशिप तैयार है, मगर उसके बाद वो वापस नहीं आए तो मैं नहीं कह सकती इस वक्त कि वो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करने चाहते हैं। मगर जाहिर है अगर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पर अग्री नहीं किए हैं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन आउट है, मगर हमें अब तक देखना है कि जो रास्ता वो इख्तियार किए हैं क्या वो कामयाब साबित होता है कि नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया बेनज़ीर साहब आपका।
थैंक यू,
बेहद शुक्रिया।